ओम शांति। धन्यवाद ओमकार भाई को, बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। हमारे बीच में आदरणीय रुपेश भाई जी पधार चुके हैं। हम सभी आदरणीय रुपेश भाई जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो सेकेंड प्रोजेक्ट है फॉलो फादर थर्ड, तो रुपेश भाई जी हम सबको समझाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। भाई जी आते हैं, उसके पहले रुपेश भाई जी हम सबको मार्गदर्शन देंगे। रुपेश भाई जी को तो सभी ही जानते और पहचानते हैं, ऐसा कोई है सभा में जो नहीं जानता हो? सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी रुपेश भाई जी का परिचय सुनेंगे। आदरणीय रुपेश भाई जी बहुत ही छोटी आयु में विद्यालय के संपर्क में आए। आपका जन्म बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक धार्मिक परिवार में हुआ। आपने जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है। आप स्पार्क की गतिविधियों से शुरू से ही सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आपने 10 से भी ज्यादा स्पार्क प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया है, सॉरी 100 से भी ज्यादा स्पार्क प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया है। आपकी विशेष रुचि योग अभ्यास में है। आप पीएम टीवी के प्रसिद्ध एंकर है। एक मुलाकात, समाधान, छूलो आसमान, ऐसे कई प्रोग्राम में आपने एंकरिंग की है। आपने 100 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल रिट्रीट कंडक्ट किया है। आपने देश विदेश में जाकर ईश्वरीय सेवाएं दी है, और जैसा आपका नाम है वैसे ही आप हो रुपेश, ईश्वर का रूप जिनमें समाया हुआ है। रूहों को राहत देने वाले, अनेक आत्माओं में रूहानी रंग भरने वाले, हमेशा मुस्कुराते हुए पेश आने वाले, अपने मधुर बोल से विश्व की समस्त आत्माओं को शफा देने वाले, ऐसे हमारे अति मीठे प्यारे रुपेश भाई जी से अभी हम सभी, जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है फॉलो फादर, उनसे हम सभी सुनेंगे। फिर से भाई जी का हम स्वागत करते हैं। फिर से एक बार सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे, और अभी हम सुनेंगे आदरणीय रुपेश भाई जी से।
ओम शांति। फॉलो फादर शब्द ही अपने आप में हम सबको प्रेरित करने वाला है। जब से हम ज्ञान में अपनी आंखें खोलते हैं, थोड़े से एक समझ वाली स्थिति तक पहुंचते हैं, तब से हम सबको यही ध्येय दिया जाता है कि आपको बाबा के समान बनना है। ये आपके आदर्श हैं, आपके सैंपल, जिनके पद चिन्हों पर आपको चलना है। तो ज्ञान के प्रारंभ से ही जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, उसे एक कमिटेड रूप में करना, डेडिकेटेड होकर करना, संपूर्ण समर्पित भाव से करना और शत प्रतिशत करना, ये इस फॉलो फादर प्रोजेक्ट का ध्येय है। और इस शब्द के साथ ही हम बहुत गहराई से अपना लगाव महसूस करते हैं, क्योंकि फादर के समान बनना अपने आप में एक बहुत ऊंची और शान की बात होती है। हमारे पिता जो सारे विश्व के लिए आदर्श, प्रकाश स्तंभ हैं, शांति स्तंभ हैं, ज्ञान स्तंभ हैं, पवित्रता के स्तंभ हैं, उनके समान बनना हम सबका ध्येय और बाबा हमेशा हम ये कहते हैं कि लक्ष्य तो बाप समान बनना है, लक्षण कहां तक आए हैं। तो उस लक्ष्य और लक्षण को समान करना, ये इस प्रोजेक्ट का ध्येय है। पिछले 2 वर्षों में काफी गहराई से इस पर कार्य हम सब ने मिलकर किया है। आप में से बहुत सारे भाई बहने फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए होंगे, हैं भी। एक बार मैं चाहूंगा जो फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए भाई बहने जरा हाथ उठाएंगे। बहुत सुंदर भाई, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं, जिन्होंने इस लक्ष्य को आत्मसात किया और बाबा के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे से आगे बढ़े। वक्त नहीं है अन्यथा एक एक का अनुभव यदि आप सुने जो हमारे पास आते हैं तो सचमुच बहुत प्रेरित करने वाले हैं। तो ये तीसरा फॉलो फादर अर्थात फॉलो फादर 3, इसमें हम क्या विशेष करने जा रहे हैं। 2 साल वैसे भी जब कोई मकान बनाया जाता है तो नींव पहले रखी जाती है, तो नींव रख दी गई है और दीवारें भी आगे बढ़ने लगी हैं। अब इस मकान को कंप्लीट करके हमें संपूर्ण डेकोरेट करना है। तो खास करके एक विशेष चीज से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मोहनी दीदी जो न्यूयॉर्क की हैं, हमारी एडिशनल चीफ ब्रह्मा कुमारी इसके संदेश पुत्री, वो एक बार संदेश में जब ऊपर वतन में थी तो बाबा ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया जिसे हमने बेस बनाया है अपने फॉलो फादर प्रोजेक्ट का। बेस तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य भी हैं, लेकिन ये एक सुंदर सा संदेश। जब वो ऊपर गए तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब तक ये कहते रहते हैं मैं बाप समान बन रहा हूँ, मैं बाप समान बन रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ, बन रहा हूँ, आई एम बिकमिंग लाइक फादर। तो बाबा ने कहा, बाबा आज इस बिकमिंग शब्द को अर्थात मैं बन रहा हूँ इस शब्द को कैंसिल करते हैं, अब ये कहो मैं हूं ही बाप समान, आई एम लाइक द फादर, मैं हूं ही। तो इस बार हमने अपना सूत्र वाक्य रखा है फॉलो फादर 3 में। पहले हम लोगों ने दोनों में रखा था कि यदि बाबा होते तो, बाबा होते तो क्या करते, तो डिफरेंट सिचुएशंस में उन्हें सामने रखते हुए उस स्वरूप को लाने का हमारा पुरुषार्थ रहा और बहुत ही गहन और सुंदर अनुभव रहे। इस बार का सूत्र वाक्य है मैं हूं ही बाप समान, बाबा के सुंदर संदेश के आधार पर। और इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है, बहुत सुंदर साइकोलॉजी है, डीप फिलोसोफी है, या सबकॉन्शियस माइंड का सुंदर एक प्रयोग भी आप कह सकते हैं इसे। जिस चीज को आत्मा बहुत गहराई से एक्सेप्ट कर लेती है वो वैसा बनती चली जाती है, जिसको साइंस में भी कहा जाता है सीइंग इज बीइंग। आप जो देखते हैं वो बनते हैं, आप जिस पर विश्वास कर लेते हैं आप वो बनते जाते हैं, आपका स्वरूप वैसा बनता जाता है। तो ये एक सूत्र वाक्य इस बार बहुत गहराई से हम अपने अंतर मन में, अपने पुरुषार्थ में, अपने जीवन में समाएंगे कि हम हैं ही बाप समान, जिसे भ्राता जी भी अपनी क्लासेस में कहते रहते हैं और बाबा तो हमेशा हमें याद दिलाते हैं, शेर का बच्चा शेर ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। तो हम भगवान के बच्चे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो हम भी तो उन्हीं के समान हैं, उन्हीं के समान हैं, उन्हीं के समान गुण, उन्हीं के समान विशेषताएं, उन्हीं के समान शक्तियां। बस उस स्मृति से हमें अपने उस सामर्थ्य को, अपनी उन विशेषताओं को, अपने उन अंदर के छुपे हुए गुणों को जागृत करना है। इस बार विशेष जो पूरा ही फॉर्मेट तैयार किया गया है फॉलो फादर 3 का, वो इस रूप में ही किया गया है कि हम पूरी तरह उस स्वरूप में ढल जाएं। मम्मा और बाबा को प्यारे शिव बाबा ने प्रारंभ में ही स्मृति दिला दी कि आप आदि देव हैं, आप आदि देवी हैं, आप नारायण बनने वाले हैं, आप लक्ष्मी बनने वाले हैं, आप ही हैं। और मम्मा बाबा ने उसे दिल से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और उस स्वीकारोक्ति ने मम्मा को मम्मा बना दिया। जैसे ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बना दिया, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये स्वीकारोक्ति अंदर से एक्सेप्ट कर लेना, इतना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में ले आता है और इसे ही हम विशेष आधार बना करके इस बार आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे पहले हम ये किया करते थे कि इस सिचुएशन में बाबा होते, तो इस बार हम ये करने जा रहे हैं कि यदि मैं बाप समान हूं तो मुझे कैसा होना चाहिए, मेरी दृष्टि, मेरे बोल, मेरा व्यक्तित्व, मेरा व्यवहार कैसा हो, मैं हूं और हूं तो मुझे कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार का गहन चिंतन और इस पे एक बहुत सुंदर एक शब्द चित्र भी तैयार किया गया है, उसे एक फाइनल रूप दिया जा रहा है, सारे ग्रुप मेंबर्स को ये दिया जाएगा, जो शब्द चित्र आपको प्रेरित करता रहेगा मैं ऐसा हूं, और कुछ विविध कमेंट्रीज निर्मित किए जाएंगे जो बहुत गहराई से हमें अंतर से परिवर्तित करते चलेंगे और अंतर से हमारे स्वरूप को बाप समान बनाती चलेंगे। तो ये फॉलो फादर प्रोजेक्ट 3 में हम करने जा रहे हैं। तो डीप एक्सेप्टेंस ये एक विशेष ध्येय रहेगा और साथ ही 1-2 के बाद जो 3 है इसमें चूंकि हमें भी बाबा के समान एग्जाम्पल और सैंपल बनना है तो इसके लिए कुछ नियमावली भी इस बार रखी गई है। नियमावली अर्थात जैसे हम कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं या कुछ कार्य विशेष करते हैं तो कुछ व्रत लेकर के, कुछ प्रण लेकर के करते हैं जिसको बाबा कहते हैं कायदे में फायदा है, प्रतिज्ञा ही परिवर्तन का आधार है। तो कुछ नियमावली भी बनाई गई है, वो नियम भी आपको बहुत तीव्रता से बाबा के समान बनने में मदद करेंगे क्योंकि सामूहिक रूप से हम नियमबद्ध होकर, एक कायदाबद्ध होकर, प्रतिज्ञाबद्ध होकर इस फॉलो फादर के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही तीव्रता से ये चीज हो पाएगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम थोड़े से, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे थोड़े थोड़े हल्के भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है आज किया आज नहीं किया, तो ये नहीं, लेकिन एक सुंदर चार्ट के जो रूप रखे जाते रहे हैं उसमें भी नवीनता इस बार लाई गई है और उस नवीनता में जो टिक मार्क करने का, गूगल फॉर्म के रूप में आपके सम्मुख रखने का वो एक सुंदर प्रारूप तैयार किया गया है, वो भी आप तक पहुंचेगा। तो नियमावली वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ समयाभाव के कारण, लेकिन वो भी आप तक पहुंचाया जाएगा। तो पसंद है ना, नियमबद्ध होना पसंद है, पसंद है कि हम नियमों में बंध करके आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब तक हम नियमों में खुद को नहीं बांधते, दादी हमेशा कहा करती थी, दादी जानकी जी, कायदे में फायदा है, तो ऐसे कायदे जो हमें फायदा प्रदान करने वाले हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। बाबा की अब तक कई कदम आप सुनते रहे होंगे, 8 कदम 12 कदम या 18 कदम। इस बार बाबा के पूरे जीवन के सार को लेते हुए हमने इसे 21 कदमों के रूप में रखने का प्लान किया है। बाबा के जीवन का, हमारे जीवन को भी श्रेष्ठता की ओर ले चलने वाले 21 कदम, बाप समान 21 कदम, ये करो तो बन जाएंगे ब्रह्मा बाप समान। ये एक ठोस हम लोगों का, ये कहें कि मैं इस मंच से, बाबा के मंच से ये कह रहा हूँ कि ये 21 कदम यदि आपने फॉलो कर लिए तो बाप समान बन जाएंगे। सचमुच यदि पूरी दृढ़ता और समर्पणता के साथ ये कार्य किए जाएं तो फिर बाप समान बनना हमसे दूर नहीं है। तो 21 विशेष कदम निकाले गए हैं, वो कदम आप तक 15-15 दिन में पहुंचाए जाएंगे और 15 दिन में विशेष, प्रारंभ में भी मैंने एक बात कही थी कि इस बार हमने 4E को बेस बनाया है अपने इस फॉलो फादर 3 के लिए, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस एंड एम्बॉडीमेंट। तो हम इस 15 दिन में जो विशेष एक एक कदम लेंगे, इसमें 5-5-5 दिन में इसे डिवाइड करके पुरुषार्थ करेंगे। 5 दिन बहुत अच्छी तरह उसे एक्सप्लोर किया जाएगा, उस पर बहुत गहराई से विचार सागर मंथन, वो ये है क्या, ये विषय है क्या, ये चीज है क्या, जीवन में कैसे आ सकता है, एक्सप्लोर करेंगे आपस में विचार सागर मंथन करके, एक दूसरे के साथ हमारी शेयरिंग भी होगी। फिर अगले 5 दिन उसका एक्सपीरियंस, गहराई से उसका क्या अनुभव है, जो बाबा कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उस अनुभव की गहराई तक चलेंगे। और साथ ही एक्सपीरियंस थर्ड फेज होगा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पॉइंट विशेष का कि अलग अलग सिचुएशन में ये किस प्रकार हमें फायदा प्रदान करता है और कैसे इसे जीवन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एंड देन एक्सपीरियंस। 5 दिन बहुत गहराई से अनुभूति उस एक बात की, जिसके लिए हम अलग अलग कमेंट्रीज भी तैयार करेंगे। और एक्सपीरियंस यदि होता है तो एम्बॉडीमेंट हम बनते ही चले जाते हैं। तो हर एक विषय को इस प्रकार से थोड़ा डिवाइड किया गया है, और ये जो हम आपस में शेयरिंग करेंगे जूम के थ्रू, यूट्यूब, जूम, ये हमारी सुंदर माध्यम है जिसके द्वारा अभी तो हम रूबरू एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन सामने होते हुए भी हम एक दूसरे से उस तरह से शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समय की सीमा होती है। लेकिन यहां से जाने के पश्चात पूरा वर्ष हमारे हाथ में होगा। हर दिन, हर हफ्ते, हर 15 दिन का बहुत ही सुंदर एक नवीनता युक्त प्लान रहेगा, जिसके माध्यम से हम उसकी गहराई में इन तीनों फेजेस में उतरेंगे। जो मैंने कहा एक्सप्लोर करने की बात, आप सब भी उस पर गहराई से चिंतन करेंगे, केवल सुनेंगे नहीं। देखिए, सुनना एक अलग बात है, बाबा का ज्ञान बहुत सुंदर है, आप जितना सुने अच्छा ही लगता है। लेकिन ये सत्संग ऐसा सत्संग नहीं है जहाँ केवल हमें सुनना है, और खास करके स्पार्क में तो ऐसा है नहीं, यहाँ बनना है। सुनना अर्थात बनना बाबा कहते हैं। तो यहाँ खुद आपको मनन चिंतन करना है, खुद एक्सपेरिमेंट करना है, खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने मनन चिंतन को शेयर करना है, साझा करना है, अपने अनुभवों को साझा करना है, तभी तो आप एम्बॉडीमेंट बनेंगे। तो यहाँ फॉलो नहीं करना, इस रूप में देख करके फॉलो नहीं, लेकिन खुद आपको फॉलो करने वाले लोग तैयार हों, ऐसा हमें बनना है। तो ये तीनों चीजें इसमें रहेंगी। तो विषय आधारित विशेष अमृत वेला भी होगा। हमारी प्लानिंग में ये है कि जो विषय हमारा 15 डेज का होगा उससे जुड़े हुए अमृत वेले भी होंगे, जिसमें हमारे सभी सीनियर्स ज्यादा से ज्यादा हमें गहन अनुभूति की ओर ले चलेंगे। संध्या योग भी होगा, जिस संध्या योग में योग के साथ साथ हमारा मनन चिंतन, जो मैं कह रहा हूँ, हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हमारे अनुभव, उनको हम आपस में साझा करेंगे। और बाबा के जो महावाक्य हैं पर्टिकुलर उस विषय पर जो हम बाबा के कदम ले रहे हैं, वो आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे कि बाबा इस विषय को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, और बाबा की क्या प्रेरणा है, बाबा के क्या महावाक्य हैं, क्या गहराई बाबा ने इस विषय पे कही है। तो वो महावाक्य भी आप तक पहुंचा जाएंगे। तो जैसे मैंने जूम और यूट्यूब की बात कही, वैसे ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भी, यदि यूट्यूब से आप जुड़े हुए देख रहे हो तो यूट्यूब में भी ये शेयर किया जाएगा लिंक के तौर पे, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी होंगे, जिसमें मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक 3 या 4 विशेष पोस्ट इसी पे बेस्ड किए जाएंगे, जो आपको उसकी और गहराई में ले जाने वाले होंगे। और इसके लिए खास अव्यक्त मुरलियों पर क्विज भी रखी जाएगी, चार्ट जैसे मैंने पहले आपको कहा था, जो बार बार आपको याद दिलाता रहे कि आपको ये बनना है, नवीन रूप में आपके सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा हर 15 डेज के लिए हम जो सोच रहे हैं, एक क्वेश्चनर भी रहेगा। क्वेश्चनर 5 पॉइंट का रखा जाएगा, जिसमें पहले आप उस विषय में कैसे हैं वो देखा जाएगा, जिसे आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं, अपने पास भी रखें और सबमिट भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर 15 डेज जो आप पुरुषार्थ करेंगे, जो कराया जाएगा, उसके बाद फिर से एक क्वेश्चनर, सेम क्वेश्चनर आपके पास रहेगा, फिर आप देख पाएंगे कि पहले आपकी स्थिति कैसी रही थी और बाद की स्थिति। अब तक हम लोग प्री पोस्ट पूरे प्रोजेक्ट के पहले और बाद किया करते थे, लेकिन इस बार प्लान है, क्योंकि और सूक्ष्म होना है ना, हमें और तीव्रता से आगे बढ़ना है। तो एवरी 15 डेज में हमने ये सोचा है कि प्री और पोस्ट आपके पास ऐसा 5 पॉइंट का एक क्वेश्चनर भेजा जाए, ताकि आप खुद देख पाए कि आप कितनी प्रगति कर पाए हैं, कितनी उन्नति कर पाए हैं। तो इस बार जैसे मैंने कहा कि बहुत ही प्रैक्टिकल हम लोगों को आगे से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमेशा मैं कई बार बोल चुका हूँ 1, 2, 3 ही बोला जाता है, 1, 2 एंड 3, उसके बाद गो, दौड़ो अब, हाँ अब हो गया पूरा। तो ये फॉलो फादर 3 हमारे लिए जैसे एक अंतिम अवसर, मतलब 200 नाखूनों का जोर लगा देने का अवसर। हमारे बाबा कितने रहम दिल है ना, मर्सीफुल है। अच्छा फर्स्ट में नहीं बन पाए बच्चे, चलो ठीक है सेकंड में जोर लगाओ। अच्छा सेकंड में नहीं हो पाए बच्चे, चलो थर्ड अवसर तुमको और देता हूं। लेकिन अब हम इसे हल्के रूप में ना लेके इस थर्ड में, फॉलो फादर 3 में अपने 200 नाखूनों का पूरा जोर लगाएं। समय देख रहे हैं हम कैसा है, और मुझे एक चीज व्यक्तिगत रूप से ये रहता है, बाबा के इस मंच से मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा। हमारी दादियां जो हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हा? सभी अव्यक्त होते चले गए ना, हमारी रतन मोहिनी दादी जी, हा? हम सबकी बहुत दिल की दुआएं कि वो दीर्घायु हो, शतायु होकर और आगे पूरे संगम युग हमारे साथ रहें। लेकिन जैसे जैसे दादियां अव्यक्त हुई, हम सबके मन में एक भाव तो जरूर आया होगा कि दादियां अब नहीं है तो उनका स्थान हमें लेना है। जब घर का बड़ा चला जाता है तो छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं, बड़ों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये यज्ञ, बाबा का विशाल यज्ञ, महान यज्ञ, इसे संपन्न और संपूर्ण करने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है। तो जैसे दादियां हमारी बाप समान बनकर पूरे विश्व की उन्होंने सेवा की, अब हमें भी बाप समान बनकर सारे विश्व तक बाबा के संदेश को पहुंचाना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये बीड़ा कौन कौन उठाएगा, जरा हाथ उठाए, कौन कौन ये बीड़ा उठाएगा? थैंक यू वेरी मच। ये कार्य हम सबको करना है। इस महान यज्ञ को संपन्न और संपूर्ण हम तभी कर पाएंगे जब बाप समान बिल्कुल साकार में बन जाएंगे, जिसको रमेश भाई जी इसी मंच पर बाबा ने बाबा से अव्यक्त बाप दादा से पूछ रहे थे। बाबा बैठे थे, रमेश भाई जी ने पुष्प गुच्छ दिए बाबा को और बाबा से कहा कि बाबा, गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है, आप हैं। ये बात हम सारे संसार में कैसे प्रत्यक्ष करें? कब ये बात प्रत्यक्ष होगी कि गीता ज्ञानदाता आप हो, श्री कृष्ण नहीं है? तो बाबा ने एक बहुत प्यारी सी लाइन कही थी और वो लाइन हमारे इन चारों बातों से जुड़ी हुई है। बाबा ने कहा, जिस दिन गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन गीता ज्ञानदाता सारे संसार में स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो गीता ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं, बाबा जो अपने समान स्वरूप हमारा देखना चाहते हैं, वही स्वरूप अब हमें अपने जीवन में ला करके बाबा को सारे संसार में प्रत्यक्ष करना है। इसके साथ साथ एक वर्क बुक भी बनाने का विचार है, जिसके माध्यम से आप सभी अपने आप को अच्छी तरह से देख पाएंगे। साथ ही ब्रह्मा बाबा समान बनने के लिए कुछ बहुत छोटी छोटी लेकिन विशेष बातें भी इस फॉलो फादर 3 में शेयर किया जाएगा। बड़ा बनाने वाली छोटी छोटी बातें, बाप समान बनाने वाली छोटी छोटी बातें, जो विनय भाई भी आपके साथ थोड़ा शेयर करेंगे। और साथ ही चारों सब्जेक्ट में, जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 थे, शिव बाबा के हर शिक्षा आज्ञा को मानने में बाबा नंबर 1 थे, तो चारों सब्जेक्ट को भी कवर करते हुए ये पूरी प्लानिंग की गई है, ताकि जैसे बाबा ने चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लिया, हम भी अपने चार्ट और पुरुषार्थ में उन बातों को शामिल करते हुए नंबर 1 लेंगे। और बाबा जैसे पूरे ही 16 कला संपूर्ण थे ना, डिफरेंट एक्टिविटी के माध्यम से उन पूरे ही 16 कलाओं को अपने जीवन में लाने का, सारों सब्जेक्ट में नंबर 1 बनने का एक सुंदर प्लान हम सबके पास है, जो आप सब तक पहुंचाया जाएगा। और पहले हम केवल क्वीज को बेस बना करके आपको सर्टिफिकेट या फिर मेडल दिया करते थे, इस बार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इन सभी एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करेंगे और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, चार्ट वाइज जो सबमिशन होगी उनकी, उसके आधार पे मेडल और चार्ट आप लोगों को इस पूरे प्रोजेक्ट के अंत में दिया जाएगा। बाबा तो देंगे ही, लेकिन विशेष इस पार्ट की तरफ से एक बार ताली तो बजा लें इसके लिए। पूरी जो डिटेल है प्रोजेक्ट प्रपोजल की, वो विनय भाई आपके सामने रखेंगे। फिर भी मैं अभी आप लोगों के सामने एक व्हाट्सएप नंबर रख रहा हूँ, जिसे आप नोट कर लें, जो इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहेंगे, इसमें आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। 9414373820। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पे केवल आप व्हाट्सएप कीजिएगा। 9414373820। जो इस फॉलो फादर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप सभी को सादर निमंत्रण है। हम मिल करके बाप समान बनेंगे। और ईमेल आईडी भी है followfather2020, ये सभी स्मॉल लेटर में है, फॉलो फादर और एक साथ जुड़े हुए हैं, followfather2020@gmail.com, followfather2020@gmail.com। वैसे फीडबैक फॉर्म में भी संभवतः या छोटे फॉर्म में भी आप लोगों को दिया जाए कि आप कौन कौन से ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, उसमें से किसी एक ग्रुप पे टिक लगा सकते हैं, बट स्टिल जब तक वो ना मिले आपको तब तक मैंने ये चीज आपको दे दी है। आदरणीय सूर्य भाई जी भी हमारे बीच आएंगे और इस सुंदर विषय को आप सबके सम्मुख रखेंगे। और हम सबका परम सौभाग्य तो ये है फॉलो फादर प्रोजेक्ट में कि आदरणीय सूर्य भाई जी ही हमारी गाइड हैं, जो ज्ञान योग के साकार स्वरूप हैं, योग जिनके जीवन का आधार और बाप समान बनना बनाना सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराना जिनके जीवन का परम ध्येय है। तो ऐसे आदरणीय सूर्य भाई जी ही फॉलो फादर प्रोजेक्ट के गाइड हैं, तो वो निरंतर हमसे मिलते रहेंगे और हर विषय पर एक क्वेश्चन आंसर सेशन भाई साहब के साथ हमेशा रहेगा, ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी उनसे हम क्लियर कर सकें और विषय की गहराई में उतर सकें। बाप दादा की एक सुंदर सी बात से मैं अंत कर रहा हूँ और विनय भाई से अनुरोध करूंगा फिर वो अपनी बातें रखें। बाबा ने कहा कि बाबा को एक ब्रह्माचारी ग्रुप चाहिए, ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा को एक ऐसा ब्रह्माचारी ग्रुप चाहिए जो पूरी तरह से ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाला हो। बाबा को ऐसे बच्चों का एक संगठन चाहिए। तो इस ब्रह्माचारी ग्रुप में, इस फॉलो फादर थ्री में हम यही चाहते हैं कि हम पूरी तरह से ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। तो ब्रह्माचारी ग्रुप में कौन कौन शामिल होना कहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अब मैं विनय भाई से अनुरोध करूंगा, जब तक आदरणीय भ्राता जी आते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल को हम सबके सम्मुख रखें जो आप सबके लिए तैयार किया गया है। और इसकी हार्ड कॉपी आपको मिले ना मिले, लेकिन इसकी सॉफ्ट कॉपी जरूर आपको मिल जाएगी। इसीलिए कहा कि ये जो नंबर आपको दिया है, इस नंबर पे आप अपनी रिक्वेस्ट, अपना नाम, अपने सेंटर का नाम आप लिख भेजें, अपना डेजिग्नेशन भी, तो एक छोटा सा परिचय, नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आप अभी किस प्रोफेशन में हैं और आपका सेंटर कौन सा है, ये तीन चार चीजें लिख करके और हम फॉलो फादर ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे आप भेजेंगे एक ग्रुप बनाया जाएगा और आप तक ये सारी, चाहे प्रोजेक्ट प्रपोजल है, क्वेश्चनर है और बाकी चीजें भी आपको पहुंचाई जाएंगी। ओम शांति। विनय भाई,
ओम शांति। रुपेश भाई जब फॉलो फादर कदम पर कदम रखने की बात कर रहे थे, एक छोटा सा अनुभव आपको सुनाऊं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हिमालय में जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो बहुत बर्फ होती है वहां। बर्फ के ऊपर चलना, तो सामने एक गाइड रहता है। अगर हम गलत जगह पैर रखते हैं तो बहुत गहरी खाई में गिर सकते हैं, किसी और जगह पैर रखते हैं तो बहुत गहरी झील में डूब सकते हैं, और इतनी ठंडी झील होती है कि हम जकड़ जाएं। हमारा गाइड सामने कदम रखता है, उसके कदम में ही कदम रखते हैं तो जान बचती है। और बड़ा स्ट्रिक्टली वो बोलते हैं, हिमालय जाते हैं तो देह को बचाने के लिए करते हैं। जब हम यहां पे फॉलो फादर ग्रुप में आते हैं तो किसे बचाते हैं या किसे आगे बढ़ाते हैं, इसका अंदाज आपको आ गया होगा। भाई ने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी हैं, सिर्फ छोटी छोटी जो बातें जो हमें बड़ा काम करवा सकती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन चला, और उसमें से जो कुछ पॉइंट्स, जैसे अभी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करना, तो आप देखिए मैं दो चार स्टेटमेंट्स आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं और आप देखिए उसमें कितनी गहराई तक हम जा सकते हैं। अब हम सोते हर दिन हैं, शरीर सो जाता है, शायद मन भटकता रहता है, सपने देखते हैं, लेकिन सोने के पहले हमें क्या करना चाहिए, वो छोटी सी बात हम अगर करते हैं तो नींद हमारी नींद नहीं रहती, योग निद्रा बन जाती है। ऐसे ध्यान में रखकर कुछ 10-12 ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स निकाले हैं। तो जैसे पहला स्टेटमेंट, उठते ही अपने दिन का प्रारंभ दैनिक लक्ष्य की ओर आगे ले जाने वाले स्वमान से करती हूं। मैं आत्मा अपने दिन का प्रारंभ दैनिक अपनी दिनचर्या में अपने लक्ष्य की ओर आगे ले जाने वाले स्वमान से करती हूं। आज के दिन मैं आत्मा इस स्वमान को धारण करूंगी। तो मैं अलौकिक हूं, इस प्रकार का भी हो सकता है। किसी से मिलते वक्त मेरा प्रथम ध्यान उसकी भ्रुकुटी के मध्य भाग पर टिकती है, मेरा ध्यान टिकता है और मैं आत्मा भाई से मिल रही हूं ऐसा पहले याद आता है। ऐसे कई हैं। मेरे समक्ष उपस्थित होने वाली सभी चीजें, जैसे वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाएं आदि, मुझे कुछ सिखाने आई हैं ऐसा एहसास निरंतर रहता है, या मुझे सफल कराने के लिए आई हैं ऐसा रहता है। हर बात में मेरा ध्यान हमेशा सकारात्मक पहलू पर ही रहता है। दिन भर में हम कई लोगों से संपर्क में आते हैं, कईयों के बारे में हमारे मन में कुछ गृहित धारणाएं होती हैं। उन धारणाओं से मुक्त होकर सकारात्मक पहलू, ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी के आसपास में चंद्र जब घूमता है तो उसका एक ही फेस हमारे तरफ होता है और उस फेस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वो प्रकाशित इसलिए दिखता है। उसके दूसरी ओर जाएं तो बिल्कुल अंधेरा होता है। तो हमें दूसरी तरफ जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, जो दिख रहा है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। इस तरीके का मेरे माइंडसेट ऐसा बन जाए। तो ऐसे कुछ सूक्ष्म पॉइंट्स हम लोग निकाल के आपके तरफ भेजेंगे। पिछले महीने में हम लोगों ने शायद ट्रस्टी शब्द लिया था। तो ट्रस्टी शब्द में क्या आता है कि मन के रूप में मुझे एक ऐसा सहयोगी दिया गया है जिसके माध्यम से मैं स्वयं का तथा सर्व का सशक्तिकरण कर सकती हूं। आत्मा के रूप में बोलते हैं ना, मनसा शक्ति दो, वाचा ज्ञान दो और कर्मणा गुण दो, इस तरीके के वाक्य बाबा के हैं। तो मेरा एटीट्यूड जो है वो इस तरीके का है, अपना भाग्य मैंने स्वयं बनाया, आज मैं जो हूं वो पिछले किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप हूं। तो इस तरीके से अगर हमने माना है तो इस भाव से मैं अब किसी भी प्रकार की दांत फरियाद से मुक्त रहती हूं। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इन प्रश्नों का आना, मैंने मैंने जो किया है मेरे लिए ही किया है, उसके सामने उंगली उठाना, ऐसे कुछ सूक्ष्म पॉइंट्स आपके बीच में हर महीने के जो पुरुषार्थ है, हर 15 दिन के पुरुषार्थ में उसमें रखे जाएंगे। भाई जी ने कई बातें तो बता दी हैं। इसमें फॉलो फादर 3 ग्रुप है, सूर्य भाई हमारे मार्गदर्शक हैं, रूपेश भाई और विनय भाई इसमें सहयोगी हैं, संयोजन करेंगे। अप्रैल से शुरू हो चुका है ये, लेकिन अभी भी अगर हम लोग शुरू करते हैं तो 15 मई से आप लोग उसको नए तरीके से ले सकते हैं और मार्च 23 तक इसका काम चलेगा। भाई जी ने बताया ब्रह्मचारी ग्रुप चाहिए, वो हमारी प्रेरणा के वाक्य हैं। समय की मांग और बाप दादा की मुरली से प्राप्त संदेश कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, बनना नहीं ही है, ये हमारे लिए प्रेरणा है। और बाप दादा के कदमों पर कदम रखना है, ये भी एक प्रेरणा वाक्य है। सूत्र वाक्य भाई ने बता दिए हैं, वैसे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है और दूसरा है मैं हूं ही बाप समान। अभी फॉलो नहीं करना है, हूं ही, जैसे कहते हैं ना कि एक पीढ़ी गई, ब्रह्मा बाबा ने एक नई पीढ़ी बनाई। हमारे इस ज्ञान में एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल माने ब्रह्मा बाबा ने दादियों को और वरिष्ठ भाइयों को अपने जैसा बनाया, उन्होंने अपनी दीदियों को, बहनों को अपने जैसा बनाया, उन दीदियों बहनों ने हमारी टीचर्स बहनों को अपने जैसा बनाया और उन टीचर्स बहनों ने हम लोगों को अपने जैसा बनाया। माने हुआ क्या, रिले रेस खेल रहे हैं। जैसे बाबा ने आके एक को सिखाया, उसने मशाल पकड़ के आगे वाले को मशाल दी, आगे वाले ने दूसरे को मशाल दी। हमारा ध्यान ये रहना चाहिए कि मैं उस दौड़ में आने वाले के ऊपर न प्रेशर डालूं, न पीछे जिसने किया है उसके काम को नीचा रखूं। तो 4x100 की रिले रेस में हम चौथे कदम पर हम आए हैं। अब विन करना ये चौथे पर निर्भर है, जो चौथी व्यक्ति दौड़ती है उसके ऊपर निर्भर है कि वो 4x100 की रिले रेस में गोल्ड मेडल लाता है या दूसरा कुछ और लाता है। इसके अंदर उद्देश्य क्या है, तक बाप दादे की आशाओं को पूर्ण करते हुए ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना, और बाप दादा के अंतिम महावाक्य जो तीन शब्द हैं हम जानते हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी को स्वरूप में लाना। साधनों के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक बार की मैं आपको बता देता हूँ। फॉलो फादर से जुड़ी हुई अव्यक्त मुरलियां, वरिष्ठ दादियों और भ्राताओं के क्लासेस, लेख, संदेश आदि। सबसे गुजारिश है कि साहित्य में ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, आदिदेव, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी भाग एक और दो, तथा ऐसा ही कोई अन्य साहित्य हमें पढ़ना ही चाहिए, और उनमें से भी हमें अपने लिए भी कुछ मुद्दे निकालने चाहिए। फिर जैसे भाई ने बताया, हम वीडियो भेजेंगे, ऑडियो भेजेंगे, तो दृश्य श्राव्य ऑडियो विजुअल एड्स आपके पास आएंगे। चेकिंग चार्ट है, प्रश्नावली है, क्विज है, गेम्स है, प्रतियोगिताएं होंगी, जूम शेयरिंग होंगी, और ये जो सूक्ष्म बिंदु हैं उनके भी प्री और पोस्ट क्वेश्चनर आते जाएंगे। वो पॉइंट देने के पहले हमारी क्या अवस्था है उसका प्रश्न, और पॉइंट सुनने के बाद में उस पर 15 दिन पुरुषार्थ करने के बाद में हमारे क्या अवस्था है उसके चेकिंग के लिए, और कुछ नवीनता हर महीने लाएंगे। भाई ने वो तीन शब्द तो आपको बता दिए हैं, चार शब्द एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस और एम्बॉडी करना। फिर उसमें नोट के रूप में लिखा है, वर्तमान समय की आवश्यकता अनुसार तीव्र पुरुषार्थ और सेवा। पिछले कुछ मुरलियों में आपने देखा होगा कि पुरुषार्थ और सेवा पे बाबा बहुत ध्यान दे रहे हैं। जब हम कुछ करने निकलते हैं ना, तो उसके स्वरूप बनने में हमें बहुत सहूलियत मिलती है, इसलिए सेवा भी करना है और पुरुषार्थ भी करना है। और बाप समान बनने के लिए 21 कदम वो हमने निकाल रखे हैं, आपके भी कुछ सजेशन होंगे तो ले सकेंगे, लेकिन उन 21 कदमों को एक के बाद एक लेते जाएंगे। फिर आखिर में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, जूम और यूट्यूब, इन चीजों से भाई ने आपको संपर्क विधि के लिए ईमेल एड्रेस दे दिया है और मोबाइल नंबर भी दे दिया है, आप उससे संबंध रखें, संपर्क रखें। आपके सामने पूरे ये हमारा यानी मीटिंग पूरी हो उसके पहले एक कागज आएगा जिसमें आपको चार जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से कौन से को चुनना है। आपसे निवेदन है आप चारों को सिलेक्ट न करें, एक को ही लें। एक ही साधय सब सधय, सब साधय सब जाय। हम दुविधा में रहें ये लें या ये लें, तो बोलते हैं दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। ऐसा न हो इसलिए एक में ही जुड़े। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बाद में दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में मिलती ही रहेगी। जिस किसी में भी जुड़ेंगे आप फॉलो फादर ग्रुप के अंदर कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं, क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट का नाम जो आप सुनते हैं, आपने सुने हैं चारों प्रोजेक्ट के नाम, विधि से सिद्धि, हम भी विधि अपना ही रहे हैं। फॉलो फादर का ग्रुप तो है ही है। वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, ये हमारी मानसिक शक्ति का परिचायक है, और हम अपने वाइब्स द्वारा कैसे परिस्थितियों को बदल सकते हैं उसके प्रयोग होंगे इसमें। और आखिर में आदि स्वरूप, अब आदि स्वरूप तो जानते हैं हमारा कौन सा है, देवता ही स्वरूप है, तो फॉलो फादर करेंगे तो देवता बनेंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे आप, दूसरे ग्रुप प्रोजेक्ट से अलग रहेंगे ऐसा न माने, आपको संपूर्णता की ओर ले जाने वाले ही ये चारों प्रोजेक्ट हैं। एक में एकाग्र चित्त होकर अगर जुड़ेंगे तो कहते हैं सूर्य की किरणों की शक्ति 2 सेल की शक्ति से बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक कि उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन लेजर की किरण में जब वो सेल की शक्ति परिवर्तित होती है तो सूर्य की किरणों से आंखों को नुकसान नहीं होता, लेकिन लेजर की किरण अगर आंख में जाती है तो नुकसान कर सकती है, करती है। तो हमें लेजर की तरह यूनिडायरेक्शनल और कोहरेंट रूप से एक ही दिशा में घोड़े को जब चलने का बोला जाता है तो चारों दोनों तरफ उसकी आंखों पर वो लगा देते हैं पर्दा, जिससे न इधर देखे न इधर देखे, हम इस रेस के घोड़े हैं, सामने देखें और उसी लक्ष्य को पकड़े रखें, बाकी के सब लक्ष्य अपने आप आते जाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई। आदरणीय सूर्य भाई जी भी हमारे बीच पहुंच गए हैं, हम जोरदार करतल ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो भी बातें आपने सुनी हैं उसे किस रूप में हम पूरे वर्ष करेंगे, फॉलो फादर कैसे करेंगे, या फॉलो फादर के लिए भ्राता जी की क्या सुंदर प्रेरणाएं हैं, वो प्रेरणाएं हम प्राप्त करेंगे, कैसे ये समय की आवश्यकता है, कैसे सहज इसे हम सरलता से अपने जीवन में ला सकते हैं। बस एक अनाउंसमेंट ये है कि जो फॉलो फादर ग्रुप की अभी बात हुई, यदि आप ग्रुप ज्वाइन भी करना चाहें तो QR कोड को स्कैन करके आप उसका भाग बन सकते हैं। बाहर QR इसका कोड लगा हुआ है, आप स्कैन कर सकते हैं। एक नवीनतम विधि है आप जानते हैं, यदि सहज हो तो, नहीं तो फिर आप जस्ट व्हाट्सएप भी करें तो भी आप शामिल हो जाएंगे। आदरणीय भ्राता जी
कर लेते,
चलिए बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा का आह्वान करके पश्चात हम भ्राता जी से सुनेंगे।
आप सभी सोचते होंगे इतनी ज्यादा बातें सुनाई जा रही हैं, क्या करेंगे, ये तो थक जाएंगे हम करते करते, टेंशन हो जाएगी, नहीं ये भी करना है, ऐसा नहीं सोचना है। सब बातें वही हैं जो रोज मुरलियों में आती हैं, इसलिए मुरलियों को फॉलो करना, माना मुरलीधर को हम फॉलो कर रहे हैं। रोज की मुरली भी हमारे लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन है, बहुत अच्छी प्रेरणाएं, हमें राह दिखाने वाली है। हम सोचेंगे भगवान राह दिखा रहा है किस चीज की, ये सोचना है किस चीज की। रोज की मुरलियों में राह आती है, आप सुन ही रहे हैं। दो तीन दिन से मैं आत्मा भाई से बात करती हूँ, शुक्रिया करो बाबा को, और कुछ अच्छी अच्छी बातें। इसलिए राह दिखा रहे हैं ताकि हमारा जीवन सहज होता चले, ताकि हम कहीं संसार में माया में उलझ न जाएं। पहले यहाँ की प्रैक्टिकल चीजें, हम इतने पावरफुल बन जाएं कि आने वाले परिवर्तन के खेल को भी आराम से देख सके। ये राह मिल रही है हमें अपने को कलयुग की निगेटिविटी से बचा कर रख सके, ये राहें दे रहे हैं बाबा मुरलियों में। तो जिसको ज्यादा भारी लगे वो मुरलियों को फॉलो करेंगे रोज की मुरली से एक दो बात, और वही आपके सामने फॉलो फादर ग्रुप के रूप में या आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आती रहेंगी। नया तो कुछ होता नहीं, कुछ ही बातें होती हैं जो हमें नई लगती हैं, जो हमें उमंग उत्साह दिलाती हैं। तो दो चीजें पहले बहुत जरूरी है श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए। एक है दृढ़ता, मुझे ये करना ही है। जो पुरुषार्थ आपको दिया जाए, देखो बहुत अच्छी चीज होती है, 15-15 दिन का लक्ष्य मिल जाता है, आपको नए लक्ष्य की खोज की जरूरत नहीं रहती, 4-5 बातों में लक्ष्य मिल जाता है। उसमें बहुत दृढ़ता, कारण तो बहुत आते हैं, मनुष्य को ढीला कर देते हैं, समस्याएं आती हैं सब कुछ भुला देती हैं, बीमारियां आती हैं और गहरा प्रभाव डाल देती हैं, दिनचर्या ऊपर नीचे आ जाए उसका भी इफेक्ट हो जाता है, और एक चीज और काम करती जा रही है और आगे ज्यादा करेगी। कभी कभी अचानक अंदर से कोई विकर्म जागृत होकर हमारे मार्ग में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, बुद्धि फ्रेश नहीं रहती, योग लगता नहीं, न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। ये सब बाधाएं आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा ने सभी बाधाओं को पार किया और पार करना उनको शक्तिशाली बना गया, पार करना उनको नई चीजें सिखा गया, बाबा के विश्वास को और बल देता गया, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। सोच कर देखें, सबसे बड़ा पेपर ब्रह्मा बाबा के साथ पास उनके सामने था जब वो आबू में आए। किसी को चाय पीने की आदत नहीं थी, ठंड बहुत थी, यहाँ ब्रजकोटी ऐसी जगह थी सीधी कई किलोमीटर की हवा आती थी, सीधी सीधी ठंडी हवा, गिरा हुआ मकान नहीं था कि कुछ रुक जाए, ऐसे में बहुत बीमार हो गए, ठंड का प्रभाव होने लगा, पैसा खत्म हो गया था। अब सोचो किसी के एक बच्चे को बीमारी और उसके पास पैसा ना हो, यहाँ हॉस्पिटल सिंपल सा एक, भारत में उस समय ऐसी स्थिति थी कि बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ा इलाज ये तो था ही नहीं, अंग्रेजों का राज पूरा हुआ था, संपूर्ण रूप से सब कुछ समाप्त था। कितनी बड़ी परीक्षा बाबा के सामने उनकी निश्चय की, उनकी स्थिति की। मैं जब याद करता हूँ, मैंने बहुत सारी कहानियां उनकी सुनी हुई हैं, सोचता हूँ देखो ब्रह्मा बाबा संसार में पहले नंबर की आत्मा, जिसके नाम से ही लोगों के भाग्य खुल जाते हैं, जिसके साथ एक टाइटल है भाग्य विधाता, उसको भी संघर्ष करना पड़ा। भाग्य जैसे साथ छोड़ गया था, लेकिन छोड़ा नहीं था, इसके पीछे कुछ राज थे। परीक्षा होनी थी कड़ी, ताकि आत्माएं मजबूत होकर बाहर आए और उनको सेवा पर भेजा जाए। कच्चों को भेजा जाएगा तो यज्ञ में ही रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। वह एक प्रभु प्लान था, लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। बैगरी पार्ट आ गया, बस जल्दी ही आपके घरों में एक ही बच्चा हो और कुछ खाने को ना हो, बच्चा रो रहा हो, दूध ना हो, उसकी तबीयत ढीली हो गई, कोई दवाई ना हो, ऐसी स्थिति आ गई थी। बाबा ने सब कुछ पार कर लिया और एक ही बात थी ख्यालों में, ज्ञान उन दिनों बहुत गुह्य नहीं होता था, लेकिन बाबा के ख्यालों में एक ही बात थी, जिसने यज्ञ रचा है, जिसको ये सब समर्पित हुए हैं, वही इनका जिम्मेदार है। और बाबा बोलते थे, शिव बाबा परीक्षा ले रहा है, सब ठीक हो जाएगा। तो परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर ले लिए, पहले नंबर पर पहुंच गए, मजबूत बना दिया परीक्षाओं ने आगे आने वाले समय के लिए। तो जीवन में कुछ भी आता है, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, पहली दृढ़ता और दूसरा उमंग उत्साह। उमंग उत्साह को मिटाने वाली बातें भी बहुत आती हैं। कभी हमसे ही कोई गलती हो जाए, आपके घरों में मेहमान आ जाए, फंक्शन होने लगे, किसी की शादियां आ जाएं, आपको जाना पड़ता है यहां वहां, उसमें आपको संभलना है। आप ये नहीं कह सकेंगे कि हम नहीं जाएंगे, उसमें अपनी स्थिति को संभालना होता है। और बस इतना ही करना कि जो उन दिनों आपको प्रोग्राम मिला हुआ है, उसको थोड़ा थोड़ा करते रहें। तो दो चीजें होंगी बहुत सुंदर, जो बहुत सुंदर हैं। एक तो आपका सुंदर स्वरूप सबको दिखाई देगा, लोग सब समझते हैं चेहरे देखकर, आपके चेहरों की शांति, आपके चेहरों की दिव्यता उनको प्रभावित करेगी, वो बाबा की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए कहीं भी जाना आना हो, किसी की ड्यूटी ऐसी होती है, बिजनेस है, घूमना पड़ता है, वीक में दो तीन बार बाहर रहना पड़ता है, खाने पीने की बात आती है, लेकिन इन चीजों को इस ढंग से मैनेज करना कि पुरुषार्थ छूटे नहीं। और अगर पुरुषार्थ नहीं छूटेगा तो दूसरी बात होगी, अगर पुरुषार्थ श्रेष्ठ रहता है, स्थिति श्रेष्ठ रहती है, तो हर कार्य में बहुत ज्यादा सफलता होती है। बाधाओं के बाद भी हम बहुत सफल होते हैं, कार्य सहज हो जाता है, आने वाले विघ्न टल जाते हैं। जो सफलता हमें चाहिए थी, उसमें अगर कोई बाधा आ रही थी, तो वो हमारी स्थिति से जल्दी ही पार हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान देना है अभ्यास। जैसे रुपेश भाई ने आपको कहा, बाबा को तो ब्रह्मचारी रूप चाहिए। संसार में ये चीजें बहुत कठिन हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के जो स्टेप्स आपको मिलेंगे, जो धारणाएं और उनके कदम आपके सामने आएंगे, उन पर यदि चलेंगे तो सब कठिनाइयां सहज हो जाएंगी और ये ब्रह्मचारी स्थिति बन जाएगी। और बाबा ये देखकर बहुत खुश होगा। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण पवित्रता की स्थिति, ये ब्रह्मा के आचरण करके जो स्थिति बनती है, इसका प्रभाव संसार पर बहुत ज्यादा पड़ता है। ये केवल हमारे लिए नहीं होती, हम संसार के आधार मूर्त हैं, कल्प वृक्ष के नीचे हैं, जड़ों में हैं। कभी तो बाबा ने कहा तुम ही जड़ें हो, तुम्हारे द्वारा ही भोजन कल्प वृक्ष को जाता है।
सब मोहता योग लगा कर पाप मिटाले स्वर्ग सजा ले तुआस काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहता योग लगा कर पाप मिटाले स्वर्ग सजा ले तुआस
ब्रह्माचारी ग्रुप, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले, उनकी त्याग तपस्या को फॉलो करने वाले, उनकी सादगी और श्रेष्ठ भावनाओं को फॉलो करने वाले, वो ऐसी महानात्माएं जिसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। आपने सुनी है कहानी, नए मकान बने, बाबा को कहते थे बाबा नए में चलो, ये पुराना कमरा बरसात का पानी टप टप करता था, कहीं कहीं सीमेंट गिरता रहता था दीवारों से, उन दिनों सीमेंट आज जैसा मजबूत नहीं होता था, चूना होता था, गिरता रहता। बाबा कहता है नहीं, पुराना आपने सुना मुरली में दो चार दिन पहले भी, बाबा ने पुराना रथ लिया है, पुराना ही मकान सब बच्चों के लिए। बाबा तो सब कुछ तुम बच्चों को देने आया है, देखो कितनी बड़ी चीज थी। सब चाहते थे बाबा बहुत अच्छी तरह रहे, बाबा को कोई कष्ट ना हो। अब पानी गिरेगा बरसात में तो कैसा लगेगा, जो उसमें सोया हुआ उसको कैसा लगेगा, टीन भी बहुत पुराना हो गया था ऊपर का, जंक लग लग के उसमें छेद हो रहे थे, उसके ऊपर वो लाल लाल टाइल्स लगे थे, फिर भी पानी कहीं ना कहीं से आ जाता था। तो ऐसा त्याग और तपस्या से भरा हुआ जीवन जिसने संपूर्ण प्योरिटी को प्राप्त किया, जिसने अनेक आत्माओं की पालना की, जिसने सबको आगे बढ़ाया, वो थोड़ा ही कभी सोचते थे कि ये मेरे बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो मेरे को कौन पूछेगा, जैसा कि आजकल लोग सोचते हैं इनको आगे बढ़ा देंगे तो ये तो हमें पीछे कर देंगे एकदम, हमारा तो मान ही चला जाएगा, हमारे तो अवसर ही छीन लेंगे, ये कॉमन बात है आजकल के संगठनों में। लेकिन बाबा चाहता था मेरा हर बच्चा महान बने, अच्छा स्पीकर बने, श्रेष्ठ योगी बने, बड़ी बड़ी सेवा करने वाला बने। तो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, समय की पहचान बहुतों को है लेकिन बहुतों को नहीं भी है, मैं कहूंगा साफ साफ। मैं एक बात बहुत पहले से कहता रहा हूं, आपके मन में क्या क्यों न उठे आज आपके सामने भी कह देता हूं। मुझे 2015 से इस चीज का आभास था कि जैसे सेवाओं से पहले, जब सेवा शुरू करनी थी बाबा को, उससे पहले यज्ञ को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। बहुत अग्नि परीक्षाएं हुई, वो आपने सुनी है। प्रत्यक्षता से पहले भी एक बार इस संपूर्ण यज्ञ को अच्छी अच्छी परीक्षाएं देनी है, उससे हम गुजर रहे हैं। कोरोना ने भी बहुत परीक्षा ले ली, कई छोड़ के चले गए हैं, कई बहुत डीले हो गए, कईयों में पुराने संस्कार जग गए, कई आगे बढ़ गए। अब वैसा नहीं होगा कि पैसा नहीं रहा, खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न परीक्षाएं होती रहेंगी। इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब बाबा की इस बात को पक्का करना है, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, जो हो रहा है वही सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। तो आने वाले सुंदर और भयावह समय को याद रखते हुए मैं आपको बाबा की मुरली से एक विजन दे रहा हूं। मैंने क्लासेज में तब से ही देना शुरू किया है, वो अपना चित्र आप बनाएंगे, विजन कहते हैं अपना चित्र, सामने जो कुछ हम देखते हैं तीसरे नेत्र से, दो नैनों से जो दिखता है उसको विजुअलाइजेशन नहीं कहते, विजन नहीं कहते, जो हम बनाते हैं। एक व्यक्ति बिजनेसमैन है, वो विजन बनाता है, 5 साल में मुझे अपना बिजनेस यहाँ तक ले जाना है, मेरे पास एक ऐसा बड़ा घर बनाना है, मुझे विजन होता है उसका, मुझे एक ऐसी फैक्ट्री लगानी है जिसमें इतना इतना माल रोज तैयार हो। ऐसे ही सभी मेरी बात को अवश्य स्वीकार करेंगे, मेरी क्या बाबा की कही हुई बात है। अंत के अंत से पहले मेरा स्वरूप ऐसा होगा, कैसा चित्र बनाएंगे कि मुझे चारों ओर से बहुत लोग देख रहे हैं, मैं कहीं बीच में हूं, मेरे अंग अंग से डिवाइन लाइट फैल रही है, सिर पर लाइट का क्राउन घेरा, आंखों से नैनों से किरणें फैल रही हैं, प्रकाश फैल रहा है, कहीं गोल्डन किरणें, कहीं बहुत पीसफुल की हल्की ब्लू रेज स्काई कलर की किरणें फैल रही हैं। अपना चित्र बना लिया करें एक दो बार रोज, एक एक मिनट, ये मेरा स्वरूप होगा। विनाश काल में लोग मुझे इस स्वरूप सपने देखेंगे, तो अभी से इस विजन को लेकर चलेंगे तो हमारे द्वारा संसार की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। उस सेवाओं में कुछ ऐसी सेवाएं हमें करनी हैं जो बहुतों की कल्पनाओं से परे हैं। अभी वो बड़ी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। जब ये आप में से अपनी स्थिति को महान बनाएं, उनके द्वारा वो महान सेवाएं होंगी। जब इस संसार का खाल बिगड़ने लगेगा, लोग हाय हाय करेंगे, हाय ये मरा वो मरा, ये हो गया वो हो गया, तब हमें सकाश देखकर उनके चित्त को शांत करना होगा। सुन के दुखी हो जाना नहीं होगा, सकाश देखकर उनके चित्त को शांत करना होगा। बाबा ने बता दिया था, अव्यक्त मूल्यों में है, बहुत शुरू में ये चारों ओर जब आकार होगा तो तुम्हारा फरिश्ता रूप या इष्ट देव देवी स्वरूप उन्हें दिखाई देने लगेगा। कोई देखेंगे ऊपर फरिश्ते घूम रहे हैं, मेरे चारों ओर तो फरिश्ते ही फरिश्ते हैं जो मेरी सुरक्षा के लिए आ गए हैं। एकदम चिंताएं परेशानी दुख अशांति खत्म हो जाएगी। किसी को सामने इष्ट देवी दिखाई देगी जो उसने जन्म जन्म पूजी है, इष्ट देव दिखाई देंगे और भय खत्म हो जाएगा। हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं, आ गए हैं हमें बचाने के लिए, ये आवाज फैलती जाएगी। किसी को कभी दिखेगा, किसी को कहीं दिखेगा, किसी को रात को, किसी को दिन में, किसी को परिस्थितियों के समय, किसी को तब के मारने आ गए हैं लोग, बंदूक के हाथ में हैं और उन्हें दिखने लगा है आपका दैवी स्वरूप, और नतमस्तक करके वापिस नमन करके चले जाते हैं। ये सीन होने जा रहे हैं। सोच लें कौन ऐसा पार्ट बजाना चाहेंगे, और ये पार्ट वही बजाएंगे। कोई धारणाएं हैं जो फॉलो फादर में तो आएंगी, आपके सभी प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगी। ये वो आत्माएं पाठ बजाएंगे, साकार मुरली में ही आ चुका है। जब तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे तो तुमसे साक्षात्कार होते रहेंगे, तुम्हें होते रहेंगे, ये नहीं हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमसे दूसरों को होते रहेंगे। तो जिनके अंदर प्योरिटी बहुत होगी, जिन्होंने अपनी दृष्टि में सबके लिए आत्मिक भाव अपना लिया होगा, जो श्रेष्ठ स्वमानधारी बन गए होंगे और जो सफल योगी बन गए होंगे, स्मृति स्वरूप उनके द्वारा ये महान कार्य होंगे। सोचना है सबको, चिंतन करेंगे अपने से। यहाँ आप बहुत सारी बातें तो सुन ही रहे हैं, लेकिन अपने से चिंतन भी करेंगे। जब हम ईश्वरीय मार्ग पर आ गए हैं, जब हमने बहुत चीजों का त्याग कर दिया है, जो छूटती नहीं थी वो सब छोड़ दी हैं, जहाँ हमने त्याग और तपस्या का मार्ग अपना लिया है, जहाँ हम परम सद्गुरु की गाइडेंस में चल रहे हैं, तो हम इस संसार को कुछ देकर जाएं। मेरे साथ चिंतन करो, संसार को बहुत कुछ देकर जाएं। एक बात होती है अपनी झोलियां भरकर जाएं, वो तो है ही ठीक, लेकिन झोलियां इतनी भर लें कि सारे संसार को देते देते भी हमारे खजाने अखुट रहें। मुझे याद है बहुत पहले जब मैं किचन में था, 50 साल पहले की बात हो गई होगी, बाबा से बहुत मिलते थे, अव्यक्त बाबा से। बाबा ने कहा जैसे भोलेनाथ का भंडारा अखुट है, ऐसे ही तुम्हारी शुभ भावनाओं का भंडारा भी अखुट होना चाहिए। दान चलता रहे, कम हो ही नहीं, खुटे ही नहीं, ऐसा हमें अपने को तैयार करने के लिए स्वचिंतन करना है। संसार की ओर, सांसारिक इच्छाओं की ओर तो सारा संसार दौड़ रहा है, तेरे मेरे में भी सारा संसार लगा हुआ है। सारा संसार, अनेक ब्राह्मण भी, मुझे इससे मुक्त होकर अपने जीवन में दिव्यता भरनी है। ये समय हाथ से निकल गया तो फिर ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, पूरे कल्प में नहीं। इसलिए एकांत से बहुत अच्छा गहन चिंतन करें, मुझे अपनी स्थिति इतनी महान बनानी ही है। बाधाएं आएगी, मैं कह चुका हूं आपको, जितना मनुष्य आगे बढ़ता है बाधाएं आती हैं। भाई साहब बता रहे थे हिमालय पे चढ़ते हैं, बर्फ, आगे गाइड चलता है, उसके कदम पे कदम रख के चलना होता है तो गड़बड़ नहीं होती। हम भी अब बाबा की हर बात को फॉलो करके कदम पर कदम रख के ऐसे चलें कि न कहीं फिसले, न गड्ढे में गिरे, न झील में गिरे, हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है सभी जोड़ लगाएंगे, स्पार्क ग्रुप, ऐसा नहीं कि बस यहाँ आ गए, हमारा नाम आ गया है स्पार्क में, करेंगे प्रोजेक्ट, इतना होगा, ये नहीं। कुछ करके संसार से जाना है, क्योंकि हमारे पीछे एक लंबी लाइन भी है। बाबा शुरू में कहा करते थे, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा राजवंश, तुम्हारी पूरी संप्रदाय, तुमसे जुड़ी हुई लाखों आत्माएं तुम्हारे पीछे हैं। तुम ठंडे चलोगे वो सब रुक जाएंगे, तुम पीछे मुड़ मुड़ कर देखोगे वो भी पीछे देखने लगेंगे, तुम्हें फॉलो करने वाले भी बहुत हैं, ये बात भूलना नहीं है। मुझे याद है जब 76 की बात चल रही थी सारे यज्ञ में, और नो डाउट हम में से बहुत आत्माएं बहुत गहरी तपस्या में लगे हुए थे, जो नहीं करने वाले उनकी तो बात छोड़ो, पर बहुत आत्माएं अच्छी तपस्या कर रहे थे। बाबा ने कभी हिंट भी नहीं दिया कि महाविनाश नहीं होगा, और एक बहुत गहरी बात कह दी थी, याद रखेंगे उसको अपने जीवन में। जैसे तुम सभी कहते हो कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे, अभी स्लोगन को गहरा कर दो, जो हम सोचेंगे वही सब सोचेंगे। सीख लिया था मैंने, याद रहता है मुझे, बहुत साल पहले की बात है, 75 में कही थी, क्योंकि कईयों को संकल्प रहता था पता नहीं विनाश होगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे। बाबा ने सबको स्टॉप कराया, ये नहीं सोचो, तुम जो सोचेगे वो, जो सोचोगे वो अनेक आत्माएं सोचेंगी, इसलिए अपने सोच पर, अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। ये सूक्ष्म गति बाबा ने संकल्पों की बता दी है। हमारे संकल्पों का प्रभाव, हम सिंपली एक चीज मानकर चलें, ख्याल रख के चलें, मेरे संकल्पों का प्रभाव 10 लाख आत्माओं पे तो होता ही है। 10 लाख मुझे फॉलो करने हैं, जो बहुत महान आत्माएं हैं उन्हें तो फॉलो करेगा सारा संसार, लेकिन वो आखिर तक। अभी हम ऐसा कर ले, एक बड़ा समूह हमें फॉलो कर रहा है और करेगा। हम सवेरे नहीं उठेंगे, उदाहरण दे रहा हूं, बहुतों की ये कमजोरी हो जाती है, हम सोचेंगे आंख तो खुल गई 3:30-4 बजे से ही तो योग करना, थोड़ा सा और सो लूं, बहुत लोग सोचते हैं। तो अनेक लोग यही सोचेंगे, थोड़ा सा और सो लूं, और फिर सोए रह जाएंगे। हमें फॉलो कर रहा है संसार, इसलिए सवेरे उठने को मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है, व्यक्त मूल्यों में आ गई है, अभी 2-3 मास पहले आई होगी। तुम्हारा सवेरे उठना बड़ा नेचुरल हो, आंख खोली उठे, भारीपन से नहीं, विभिन्न संकल्पों से नहीं, खींचतान करके नहीं कि उठना ही पड़ेगा बाबा क्या कहेगा, संकल्प है तो अच्छा ये भी, लेकिन इसको नेचुरल बना देना है, बहुत बड़ी मदद मिलेगी हमें। ऐसी बहुत सारी बातें आप सबको मिलती रहेंगी। तो पसंद आया जो विजन मैंने आप सबके लिए दिया, लाइट लाइट, और ऐसा देखना कभी मैं थोड़ा ऊपर हूँ आकाश में और संसार के अनेक लोग मुझे इस रूप में देख रहे हैं, कभी मैं पहाड़ी के ऊपर हूँ अनेक लोग मुझे इस रूप में देख रहे हैं, कभी मैं इस देवी मंदिर में हूँ बहुत सारे भक्त इस स्वरूप में मुझे देख रहे हैं, जय जयकार हो रही है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जिसका प्रकोप संसार में बढ़ता जा रहा है, सबको अपने को उससे बचा कर रखना है। अभी सावधान रहने की जरूरत है इस बारे में कि हमारे संकल्पों की स्पीड फास्ट ना हो। जो आपको अभ्यास मिलेंगे वो यदि आप करेंगे तो संकल्पों की स्पीड तो धीमी रहेगी ही, फिर भी ध्यान जरूर देना है कि कहीं हम कोई बात होने पर बहुत तो सोचते नहीं हैं। संगठनों में बातें भी बहुत आ रही हैं, कोई कम नहीं आ रही हैं। संस्कारों का टकराव भी ज्यादा हो रहा है और ज्यादा होगा। हिसाब किताब भी उभर कर आने लगे हैं और ज्यादा आएंगे। संसार का भी हाल गिरेगा और जो ब्राह्मण लंबे काल से ढीले ढाले चले हैं उनका हाल और गिर जाएगा, क्योंकि कलयुग के वाइब्रेशंस उन पर गहरी छाप छोड़ देंगे। इसलिए मेरे संकल्पों की स्पीड फास्ट ना हो, नहीं तो इससे बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। हमें तो सबके मनों को पावरफुल बनाना है, ऐसा बनाना है कि किसी भी तरह की मानसिक बीमारियां उनको आ न पाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो जो प्रोजेक्ट आप लेंगे, जो भी लें, उसमें बहुत तत्परता से, बहुत हार्ड वर्किंग होकर, ढीलेपन से नहीं, कोई भी कारण आगे देकर नहीं, कारण का निवारण करते हुए। कारण यही दे देते हैं, बहुत सेवा है, घर में बहुत काम है, वो तो रहेगा, सेवाएं तो बहुत बढ़ेंगी। साकार में बाबा थे तो कहा करते थे एक एक टीचर को 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे। बहनें सोचती थी कैसे होगा, हम तो मर ही जाएंगे। अब 10 छोड़ो, 10 तो छोटी बहनें संभाल रही हैं। समय अनुसार बाबा का बल मिलता है, वैसी हमारी स्थिति भावनाएं करना है, उमंग उत्साह हो जाता है। याद रखना है सबको, जैसा सुंदर संकल्प हम करते हैं वैसा ही सुंदर स्वरूप हमारा बन जाता है। लास्ट का एक छोटा सा अनुभव सुना के एंड कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मानसरोवर में बत्ती चलती है, ये अनुभव मुझे अपने को बहुत प्रिय लगा। तो मेरी क्लास थी मधुबन में, पांडव भवन में, 6 से 7:30। यहाँ की क्लास हमसे मिस हो गई, हमने डायरी में लिखा नहीं था, वह छूट गई। अब ऑर्गेनाइजर बहने भी कह रही आधा घंटा भी आ जाओ, अभी कैसे आए। माताओं के, उनके टीचर्स के फोन आ रहे, भाई जी आज हमने रात को रास रखी थी, डांडिया रास, वो हम छोड़ देते हैं, आप आ जाओ, हम खाना भी 10 बजे खा लेंगे, आप आ जाओ। और जब मैंने उनकी प्यार और लगन देखी तो मैंने सोचा हम चलते हैं, 6 से 7 माह का क्लास पूरा कर देंगे, 7 बजे चलेंगे, 8 बजे तक मानसरोवर पहुंच जाएंगे। 8 से 9:30 तक जो भी टाइम होगा क्लास करा के फिर वापिस आ जाएंगे, खाना पीना छोड़ देते हैं आज। और एक संकल्प हो गया, नॉर्मली क्या संकल्प होता है, ऊपर से आना माना थकना, टेम्परेचर डिफरेंस 10 होता है गर्मी में, तो ऊपर अगर 35 है तो यहाँ 45 होगा, थकान देता है। फिर तुरंत क्लास के लिए बैठना, फिर तुरंत जाना, खाने की छुट्टी। मैं सोचा, मैं क्यों सोचता हूँ मैं थक जाऊंगा, मैं थकूंगा ही नहीं, मैं बहुत फ्रेश रहूंगा, आने और जाने को एंजॉय करूंगा, बहुत ज्यादा आनंद रहेगा, माताएं खुश होंगी, उनकी दुआएं मिलेंगी। और सच बताऊं, जब मैं 10 के आसपास ऊपर पहुंचा था तो मैं बड़ा आनंदित था, थकान की तो बात ही छोड़ दो। ये अनुभव मुझे सदा के लिए सिखा गया कि तुम बहुत अच्छा सोचो, मैं थक जाऊंगा, ये हो जाएगा, ये छोड़ दो, तुम्हारे संकल्प ही तुम्हें थकाते हैं। ये एक मैंने उदाहरण दिया, तब से मैं अभ्यास करता हूं इसका बहुत अच्छा। तो चलें इस प्रोजेक्ट को, अपने चारों प्रोजेक्ट को सभी लगन से संपन्न करेंगे और कई कदम अपनी स्थिति में आगे बढ़ जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। विश्व प्रसिद्ध जोड़ी समाधान प्रोग्राम के हम सबके सम्मुख है भाई जी, आपसे मिलने के लिए हर कोई लालायित रहता है, चाहे बिकेज हो नॉन बिकेज हो, आपकी एक झलक देखने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है, और आपसे एक मिनट भी बात हो जाए उसके लिए तरसता है। तो ऐसे हमारे परम श्रद्धेय सूर्य भाई जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत 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 शुक्रिया भाई जी, धन्यवाद।